ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय वायुसेना दिवस का इतिहास और इसके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक एयर वाइस मार्शल SJ ननोदकर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
आज सुर्खियों में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के इतिहास और उसकी उपलब्धियों पर, और इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं विशेषज्ञ एयर वाइस मार्शल SJ नानोदकर। नानोदकर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
शुक्रिया।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज भारतीय वायुसेना दिवस है और भारतीय वायुसेना की एक बहुत लंबी परंपरा रही है, बहुत सारी उपलब्धियां उसके नाम हैं। तो शुरुआत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दें कि भारतीय वायुसेना का जो गठन है वो किस उद्देश्य से और कब हुआ और क्या क्या जो मेजर उपलब्धियां हैं भारतीय वायुसेना ने अर्जित की।
सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को इस 91st एयरफोर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो उम्र है वायुसेना की, अंदाजा आप लगा सकते हो कि 91 साल पहले क्या रूप रहा होगा और आज क्या रूप रहा है, उसका कैसे प्रोग्रेस किया है जिसके बारे में आपने अभी जिक्र करने के लिए कहा है। आज एक महत्व का दिन है क्योंकि आज भारतीय वायुसेना का इंसाइन, जो भारतीय वायुसेना का एक निशान होता है, वो निशान के ऊपर थोड़ा सा बदलाव लाया गया है और वायुसेना का जो क्रेस्ट है वो निशान के ऊपर अब परमानेंटली लाया गया है। यानी पहले सिर्फ भारत का झंडा होता था और वायुसेना का ट्राई कलर का राउंडल होता था, उसके साथ साथ अभी वायुसेना का क्रेस्ट भी जुड़ गया है। तो एक महत्व का दिन है आज वायुसेना के लिए और उस अवसर पर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1932 में वायुसेना की स्थापना भारत में हुई थी, तब वो रॉयल इंडियन एयरफोर्स की तरह माना जाता था क्योंकि वहां उस समय हमारे ऊपर ब्रिटिश राज था और उन्होंने देखा कि एशियन कॉन्टिनेंट में अगर किसी को जिम्मेदारी उठानी है, जो हवाई लड़ाइयां हो सकती थी उन दिनों में, तो उसमें कौन हिस्सा लेने में काबिल है, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी हमारे सिपाहियों को दी थी क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये ना ही सिर्फ एयरक्राफ्ट मेंटेन करने में बल्कि एयरक्राफ्ट को उड़ाने में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में जाके जिन वायु योद्धा ने ट्रेनिंग ली थी उनको ये तो बात समझ में आई थी, तो उसकी बदौलत वायुसेना की स्थापना करने का उन्होंने निर्णय लिया और वही जन्म हुआ भारत के वायुसेना का। उन दिनों में राज ब्रिटिश कर रहे थे हमारे ऊपर, तो उस राज की वजह से उसके आगे रॉयल जुड़ा हुआ था, लेकिन उसमें काम करने वाले सारे, चाहे वो अफसर हो या जवान हो, सारे भारतीय थे और उनकी देखभाल करने वाले कुछ ब्रिटिश अफसर उनके ऊपर थे और ब्रिटिशों ने उनकी ट्रेनिंग करी हुई थी ब्रिटेन में। तो ये तो हुआ शुरुआत। और उन दिनों में जो रॉयल एयरफोर्स में हवाई जहाज थे उसमें से कुछ तैनात हुए थे भारत में, तो उन्हीं को हमारे पायलट्स उड़ाते थे और हमारे सिपाही और इंजीनियर जो थे वो उनको मेंटेन करते थे।
जी नानोदकर जी, एक चीज मैं यहाँ जानना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो जिस वक्त भारत की एयरफोर्स का गठन हुआ तो उस समय इनिशियली उसका मतलब जो पूरा सेटअप था वो आधारभूत ढांचा क्या था, कितने हवाई जहाज थे और कहाँ कहाँ भारत में उनका सेटअप था?
शुरुआत का जो था भारतीय वायुसेना के रॉयल फोर्सेस के अंडर स्थापना हुई, तब शुरू में सिर्फ 8-10 लोगों को ही इंडक्ट किया हुआ था और वापिस की एक यूनिट बनाई गई थी जो कि भारत में लाई गई थी, जो उनके हवाई जहाज थे वो भारत में लाए गए थे और यहाँ पे एक यूनिट की स्थापना हुई थी और उसके बाद में उसको बढ़ाकर एक ग्रुप बनाया गया था जिसके ग्रुप के कमांडर थे वो हमारे 5-स्टार एयर मार्शल अर्जन सिंह, उन्होंने नेतृत्व किया था उनका और वहां से शुरुआत हुई थी वायुसेना की। एक छोटा सा यूनिट पहले बना था और फिर वहां से ग्रो होके एक ऑपरेशनल ग्रुप बनाया गया था जो बर्मा के फ्रंट पे डिप्लॉयड होता था उन दिनों में। एक यूनिट पालम में था, तो वहां से शुरुआत हुई थी भारतीय वायुसेना की। और
तो स्वतंत्रता से पहले की जो भारतीय वायुसेना थी उसने क्या किसी युद्ध में भी भाग लिया था, द्वितीय विश्व युद्ध में या कहीं और उनको फ्रंट पे ब्रिटिश टाइम में लेके गए थे?
यस, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहां देख सकते हैं कि पुराने एयरफील्ड बने हुए थे, क्योंकि जो अलाइड फोर्सेस थी उनको पता था और उस समय हमारे यहाँ अमेरिकन फोर्सेज भी डिप्लॉयड थी हिंदुस्तान में एज अ पार्ट ऑफ अलाइड फोर्सेज, और उनको ये पता था कि जापानीज फोर्सेज आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट से आएंगे, तो वहां पर कलाईकुंडा खाली में जिक्र हो रहा है क्योंकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक जो 65 में जिन्होंने हंटर से काफी धमाका उड़ाया था कलाईकुंडा के ऊपर और एयरफील्ड को बचाया था, वो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से आके उनको अपना पुराना बेस विजिट करना था। तो अगर आप कलाईकुंडा जो खड़गपुर के पास में है वहां देखेंगे तो वहां से आगे ईस्ट में छोटे छोटे काफी हवाई पट्टियां बनाई थी जहां से भारतीय वायुसेना और साथ साथ में अलाइड फोर्सेस के सेनाएं वहां से भाग लेती थी। तो इंडियन सोल्जर्स ने और पायलट्स ने ईस्टर्न फ्रंट पे बर्मा के फ्रंट पे काफी योगदान दिया है उन दिनों में, और वहां से सारी शुरुआत हुई है हवाई युद्ध की, जो एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है वो वहां से शुरू हुआ है।
तो स्वतंत्रता के बाद किस तरह का विकास हुआ भारतीय वायुसेना में और कौन कौन से मोर्चों पे उसने काम किया?
हम सबको पता है कि इमीडिएटली इंडिपेंडेंस मिलते ही नॉर्थ में हमारे यहाँ घुसपैठियों ने, घुसपैठी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विभाजन हुआ था देश का और आज की तारीख में भी वहां पे जो रेखाएं बनी हुई थी वो स्पष्ट नहीं है, तो उसकी वजह से जो विभाजन के बाद में हमारे यहाँ नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर में जो सैनिक या अर्धसैनिक या बाकी जो लोग थे वो घुस रहे थे वहां से, तो उनको रोकना जरूरी था और वहां पर हमारे पास कुछ नहीं था। तो हमने सबने मेहर बाबा का नाम सुना हुआ है, उन्होंने पहला डकोटा में लैंडिंग करी, तो उन्होंने लैंड करके हमारे ट्रूप्स को ट्रांसफर किया था, यानी वो बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स की एक्सरसाइज उन्होंने अंडरटेक की और वहां उनके लैंडिंग करने तक हमारे कोई पायलट वहां पर लैंड नहीं करे हुए थे। तो पहली बार डकोटा में सैनिकों को लेके उनके सामान को लेके वहां लैंडिंग करी मेहर बाबा ने। वो एक लेजेंड माने जाते हैं क्योंकि उनकी वजह से आज वो टेरिटरी हमारे पास है, नहीं तो वो भी कोई हड़प कर लेते। तो वहां से इंडिपेंडेंस के बाद शुरुआत हुई और उसके बाद में हमको पता है कि 1962 के चाइना एग्रेशन में भारतीय वायुसेना ने ज्यादातर लॉजिस्टिक्स सप्लाई का काम किया है, ऑफेंसिवली हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, राजकीय स्तर पर फैसला था और उसका नतीजा हमने सबने देखा हुआ है। मगर जहां जहां बुलाया गया था वहां वहां भारतीय वायुसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था उस युद्ध में, और जहां जहां सप्लाईज की या जहां उनको यूटिलाइज किया गया था कोई भी रोल में तो वहां भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था। और उसके बाद में 65-71 फिर कारगिल के युद्ध में, तो ये सारी प्रोग्रेसिवली जो जो हमारी लड़ाइयां हुई हैं, और हमको पता है कि 71 में ग्राउंड फोर्सेस का तो रोल महत्वपूर्ण रहा है, इंडियन नेवी का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन जो नेल इन द कॉफिन कहते हैं वो गवर्नर हाउस पे जब हमारे हंटर्स और MiG-21 ने जो अटैक किया उसकी वजह से आई थिंक ईस्ट पाकिस्तान में जो जनरल साहब थे और उनकी जो सेना थी और उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जो डिसीजन मेकर्स थे वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में, वो हिल गया उसकी वजह से और उन्होंने सरेंडर अनाउंस किया। और उसके बाद में तो इतिहास है कि हमने बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश क्रिएट किया हुआ है, तो वो तो हाइट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आई थिंक पिनेकल कह सकते हैं उसको हम वायुसेना की हिस्ट्री का। और उसके बाद में आज की पीढ़ी को याद है इसलिए मैं उसको भी सामने रखना चाहूंगा कि जो कठिन पीक्स थे जो हाइट पे थे जहां पर हमारी आर्मी फिजिकली जाके कैप्चर करना जरूरी था उसको, तो जहां जहां जैसे कि टाइगर हिल का अटैक तो बहुत फेमस है, मिराज 2000 में लेजर गाइडेड बॉम्ब तब हमने इसराइल से बने हुए खरीदे थे और मिराज 2000 पर हमने मॉडिफाई करे हुए थे क्योंकि मिराज 2000 फ्रेंच जहाज है और उसके ऊपर हमारे पास इस तरह के फ्रेंच हथियार थे नहीं उस समय, तो हमने इसराइल से वो हथियार लाके उसमें मॉडिफाई करके उन हथियारों के साथ ये अटैक किए थे जिसकी वजह से हमारी थल सेना को आसानी हुई कि जाके टाइगर हिल जैसे डिफिकल्ट टेरेन में जाके उसको कैप्चर करे। और मोंटेगालो का अटैक फेमस है जहां पे लॉजिस्टिक नोड को खत्म कर दिया था बॉम्बिंग करके जैगवर्स MiG-23 और मिराज 2000 जैसे जहाजों ने, तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है भारतीय वायुसेना ने हर एक युद्ध में।
जी नरोत्कर जी, मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूं क्योंकि जैसा हम सभी पढ़ते रहते हैं अपनी सेनाओं के पराक्रम के बारे में, लेकिन आपको लगता है कि भारतीय वायुसेना का कई हमारे युद्ध ऐसे हुए जहां और ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए था?
1962 की मैं बात कर सकता हूं कि 1962 में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं के बराबर हुआ है और ये तो हिस्ट्री है तो इसमें छुपाने वाली बात नहीं रही है और वो एक्नॉलेज किया गया है। हो सकता है कि अगर भारतीय वायुसेना को जो भी हमारे पास उस समय हथियार थे या जो भी हवाई जहाज थे उनको अगर सही ढंग से इस्तेमाल करते हम तो मेरे ख्याल 62 का जो शर्मनाक एक हमको हार माननी पड़ी, और वो हार से ज्यादा जो हमारे लोग मारे गए हैं, जो सैनिक मारे गए हैं, शरणागति किसी को प्राप्त करना मंजूर नहीं था, तो इसलिए उस समय लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। तो हो सकता है कि चित्र थोड़ा सा अलग से होगा, अपने इतने जवान शहीद नहीं होते।
जी जी, और जैसा कि आपने बताया भी कि स्वतंत्रता से स्वाधीनता से पहले ही नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास एक अच्छी स्थिति थी वायुसेना को लेके, और उसी फ्रंट पर अगर लड़ाई हो रही थी वहां पर काफी निर्णायक भूमिका भारतीय वायुसेना अदा कर सकती थी।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हमारे पास तजुर्बा था, हमारे पास शायद हो सकता है कि इक्विपमेंट उतना अच्छा ना हो, क्योंकि उस समय अलाइड फोर्सेस के और रॉयल एयरफोर्स के हम हिस्सा थे ऐसे कहा जा सकता है। तो उस समय के जो हवाई जहाज थे वो तो हमारे यहाँ कुछ भारतीय वायुसेना ने खरीद लिए थे इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत, तो वो थे लेकिन वो नंबर्स कम थे। लेकिन जो भी इक्विपमेंट हमारे पास था उस समय 62 में वो काफी ठीक ठाक इक्विपमेंट था। तो इक्विपमेंट में कमी हो सकती है लेकिन बुराई उस इक्विपमेंट में थी नहीं, और उसको एम्प्लॉय करने के लिए भारतीय वायुसेना तत्पर थी। तो वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था उस समय का, कि हो सकता है कि पॉलिटिकल एंटिटी उस समय ऐसे सोचती थी कि इसको एस्केलेट ना करें, क्योंकि अगर एस्केलेट करते हैं तो पूरी उनका रुख हमारी तरफ आ सकता है। तो ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, उस समय क्या परिस्थिति थी, किस हिसाब से ये डिसीजन लिया गया कि जो हो रहा है उसको एस्केलेट ना करें। तो ये एक बड़ा डिसीजन है उस समय का, और परिस्थितियां कुछ अलग थी। देखो, हाइंडसाइड में हम बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं, पर उस समय जो डिसीजन मेकर होता है उसके पास क्या इनपुट्स होते हैं, उसके पास क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, उसके हिसाब से उन्होंने जो डिसीजन लेना था। और यहां अगर हाइंडसाइड में हम देखते हैं और जो डिसीजन था उसमें गलतियां अगर हम ढूंढते हैं, और ये एक्नॉलेज किया गया है कि अगर वायुसेना को वहां तैनात करते हम और उनकी जो क्षमता थी उसको यूटिलाइज करते हम, तो नतीजा थोड़ा सा अलग हो सकता था, और पर्टिकुलरली हमारे जो सैनिक शहीद हो गए वो नंबर बहुत कम हो सकता था।
जी नानोतकर जी, अंत में सिर्फ एक बात मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमें संक्षेप में अगर बता सकें आप, कि जो पीस टाइम है, शांति के समय में वायुसेना किस तरह की भूमिका अदा करती है?
देखो, एक सबसे बड़ी भूमिका है पीस टाइम में, जो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो बॉर्डर है, अगर आप हवा की तरफ से या एयर या स्पेस की तरफ से देखा जाए तो ये सारी खुली है, कोई लाइन बनी हुई नहीं है, तो वहां से कोई भी इंट्रूडर किसी भी वक्त पीस टाइम में आ सकता है और हमारे देश में हमारे सरहदों के अंदर आके जो इम्पोर्टेंट जो हमारे इंस्टॉलेशंस है या हमारी जो डिप्लॉयमेंट्स है उसकी तस्वीरें भी खींच सकता है। तो एक तो पीस टाइम में हम हमारी जो सरहदें हैं उसके अंदर किसी को आने नहीं देते। इवन पीस टाइम में जहां से हमको लगता है कि कोई गड़बड़ कर सकता है सरहद के इस तरफ आके, तो वहां पर हम 24/7 डिप्लॉय होते हैं, रेडार और प्लेटफॉर्म यानी हवाई जहाज लाइव मिसाइल लेके डिप्लॉय होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी हमारे देश को खतरा है कि ऐसे वक्त पर जब लगता है लोगों को कि भाई वायुसेना मजे कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो बॉर्डर पर कहीं एयरफोर्स स्टेशन में जहाज फुल्ली लोडेड रेडी खड़े हुए हैं कि 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर जैसे उनको ऑर्डर होगी वो टेक ऑफ करके ऐसे कोई हमारे सरहद के अंदर घुसता है तो उसके साथ निपटना है।
जी,
और
जी।
वो रेडार में कंट्रोलर्स अभी भी बैठे हुए हैं, निगरानी रख रहे हैं। और उसके साथ साथ पीस टाइम में HADR ऑपरेशन है, रिलीफ ऑपरेशन है, कहीं अभी हाल ही में क्लाउड बस्ट हुआ था तो वहां पे हेलीकॉप्टर और सामग्री लेके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जा रहे थे वहां पे। तो ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कहीं बाहर के देशों से भी कॉल आता है तो हम तैयार होते हैं। और अगर ये सब करना है हमको, लड़ाई में अव्वल रहना है, तो पीस टाइम में ऑन डेली बेसिस वायुसेना के पायलट्स और ग्राउंड टेक्नीशियंस प्रैक्टिस करते हैं कि अगर दुश्मन का कोई इरादा बदल जाए और अगर वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब इमीडिएटली कैसे देना है।
जी नानोतकर जी, हम चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर, और भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया जी।
अभी आप सुन रहे थे भारतीय वायुसेना दिवस का इतिहास और इसके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक एयर वाइस मार्शल SG ननोतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsZone EIR और यूट्यूब चैनल NewsZone EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है EIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नम्बर है 9289904044।